العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ آج سترویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. سترویں پارے میں دو صورتیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ حج جو ہے. سورۃ الانبیاء میں یہ مکی سورت ہے اور یہ آپ متوسط دور کہہ سکتے ہیں، بلکہ متوسط دور کا جو بھی آخری حصہ ہے، 9 سے 10 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے انبیاء، اس کا جو نام بھی ہے اس وجہ سے اسی نسبت سے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ایک ساتھ آیا، اور 18 کے قریب جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کی توحید دعوت توحید تھی، اور ان کی حیثیت پھر بتائی گئی ان کی کیا تھی، یہ نبی انبیاء رسول کا ہونا، پھر ان کی دعوت اور ان کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اچھا، اس سورت چونکہ مکی ہے تو اس میں یہ سورت بھی دیگر مکی سورتوں کی طرح اس پہ جو ہے وہ عقائد پہ اس پہ بے انتہا جو زور دیا گیا ہے، لیکن اس سورت نے یہ جو عقائد کے موضوعات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں جو ہے یہ بات بھی شامل ہے کہ کائنات میں جتنے جاری قوانین قدرت ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کو ساتھ جوڑا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ، اور اس لیے کہ اسلامی نظریہ حیات بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اور یہ نظریہ قوانین قدرت اور فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اسی لیے اس کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اور اسلامی نظریہ حیات بھی دراصل اسی حق پر قائم ہے جس حق کے اوپر یہ کائنات اور ارض و سما قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات بھی ابس نہیں ہے اور باطل نہیں ہے، اور اس کے اندر پیدا شدہ مخلوق بھی ابس اور باطل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام نازل کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، جو کتابیں بھیجی ہیں، جو شریعتیں بھیجی ہیں، وہ بھی ابس اور باطل نہیں ہیں بلکہ حق ہیں. اب اس کا جو ہے وہ اس کی صورت کے بھی کئی حصے آپ کہہ سکتے ہیں. پہلے حصے کے اندر تو جو پہلا حصہ ہے وہ بہت ہی جھنجھوڑنے والا ہے، اور اس میں جو انسان کی جو فکر ہے، ظاہر ہے جو پہلی چیز ہوتی ہے انسان کے کردار کو اور اس کے زندگی کے رخ کو متعین کرنے والی، وہ اس کی فکر ہوا کرتی ہے. لہذا انسانی فکر اور اس کی جو ہے اس کو اپیل کیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے ضربات لگائی گئی ہیں، اور کہ لوگوں کو دیکھیں آنے والے خطرات سے جو ہے آگاہ کیا جائے. اگر کسی کو آل آف سڈن بتا دیا جائے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اور اس میں زندگی کو جو ہے داؤ پہ لگانے والی بات ہے، اور اس میں ایسے خطرات ہیں، تو پھر جو ہے وہ یقیناً چونک جائے گا اور اس کے بارے میں خبردار ہوگا اور اس کے بارے میں معلومات لے گا. تو یہ وہ انداز جو ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو یہ تمہیں جو ہے بہت یہ غفلت بہت جلد تمہیں ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے. اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کی جو فکر اسلامی کی جو ٹھوس جو سچائی تھی، جو حق تھا، اور نظام کائنات میں موجود جو سچائی ہے، یعنی پوری کائنات جس کے اوپر قائم ہے نظام کے اوپر، ان کو باہم جو ہے وہ جوڑا گیا ہے اس طریقے سے. تو یہ وہ بات ہے جو اس صورت کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. حالانکہ اور یہی بات ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر عقائد کا بیان تو ضرور ہے، لیکن ہر دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ عقائد کا بیان، اس کے اسلوب، اس کے دلائل، اس کے براہین جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، اس لیے کہ ان میں بالکل یکسانیت بھی نہیں ہے. لیکن بات بار بار وہی بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو مان کے نہیں دے رہے تھے، لوگ شرک کے اوپر قائم تھے، لوگوں کے عقائد صحیح نہیں تھے، تو بار بار جو بات وہ جو مقصد ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہے. ہاں، بات کرنے کا اسلوب، بات کرنے کا ڈھنگ، دلائل، براہین، یہ جو ہے چیزیں مختلف جو ہے وہ بدلتی چلی گئی ہیں. اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ اس رسول کی جو مخالفت تم نے اپنا رکھی ہے اس پہ اس کے بہت ہی جو ہے وہ برے نتائج آنے والے ہیں. اور یہ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے بارے میں بات بتائی گئی ہے، اس کی مقصد کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے نہ یہ بے مقصد ہے और ना इसके अंदर जब इंसान को पैदा किया गया है उसकी तख्लीक का भी एक मकसद है और वो ये है कि वो शर खैर और शर की आजमाइश की जाए। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के अंदर फिर उसको एक्सपोज कर दिया है शर के ऊपर भी और खैर के ऊपर भी, और फिर इंसान को ये आजादी दे दी है कि वो आप अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस से, अपनी जो अख्तियार से जो है वो जिस चीज को जो है वो चूज करे, जिस चीज को चाहे अख्तियार करे, और फिर उसके नतायज भी उसी हिसाब से। अल्लाह ताला किसी को जबरदस्ती ना हक कबूल करने पे मजबूर करता है और ना जो है वो उसको बुराई कबूल करने पे और शिर्क और जो है बुत परस्ती कबूल करने पे, बल्कि अल्लाह ताला ने ये आजादी दे दी है चॉइस की कि तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करो और अकल को इस्तेमाल करके फिर इन चीजों को पहचानो। और कायनात की तखलीक को बताया कि ये कोई खेल और तमाशा नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की मनसूबा बंदी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मक्का वाले मुख्तलिफ जो है झूठे इल्जाम लगाते रहते थे तो उनकी भी बाकायदा तौर पे जो है उनको उनको एड्रेस किया गया है और उनको जो है इस पे हलाकत की धमकी दी गई है। ये फिर कुरान मजीद में फरमाया कि कुरान मजीद के अंदर हमारा जिक्र मौजूद है, वलकद अनज़लना अलैकुम किताबन फी ज़िक्रुकुम, तो इसी कुरान के अंदर तुम्हारा जिक्र मौजूद है। अब देखें कि कुरान के जो बयान करदा किरदार है, बेशक आप बाई नाम के हिसाब से बाई नेम यानी आज हमारा जिक्र मौजूद ना हो, लेकिन अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक एक कुरान की आयात थी जो जो सूरह अनफाल की, जो बिल्कुल हू बहू ऐन ही हमारी कौम की उपतरती थी कि किस तरीके से अल्लाह ताला से वो लोग दुआ मांगते थे कि हम तादाद में थोड़े और हम दबा लिए गए हैं और हम कमजोर हैं, तू हमें जो है वो अलग जमीन का खिता अता कर, और अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन का खिता अता किया। और फिर जब जाहिर है जो तो फिर उन्होंने अल्लाह से वादे किए और बाद में फिर अगर जो अल्लाह को वादे को जो भूल गए तो उसका हु बहू इतलाक जो है हमारी कौम के ऊपर जो होता था। तो इस तरीके से ये कुरान के बयान करदा किरदार जो है उसी तरह मौजूद है आज भी, जिस तरीके से कुरान के अंदर जो कुरान ने बयान की है बहुत जमाने पहले के किरदारों को आप उनका इतलाक करके देख लीजिए आज के हालात पर और आज के किरदार पर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है वो जाहिलियत और उसके रसूम और रिवाज और उसका तर्ज अमल बिल्कुल आज यही है। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो एतराज करते थे रसूलों पर, बाद के आने वाले अदवार के अंदर हमने पढ़ा है कुरान मजीद के अंदर कि सब रसूलों के ऊपर वो एतराज किया गया, फिर कितने 5-6 हजार साल के बाद भी जो है अगर इतना अरसा गुजरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, उस वक्त भी उसी तरह के एतराज आप फिर लोग किया करते थे। तो देखें कि ये जो इंसान की जो फितरत है और जो जाहिलियत है, जाहिलियत के उसलूब और जाहिलियत की जो है मिजाज वो वैसे ही रहता है। तो फिर ये उन इस कुरान मजीद के हाल के किरदारों को उनके आज के हालात और आज के किरदारों पर अप्लाई करके और इतला करके हम देख सकते हैं कि कुरान के आईने में कौन क्या है। और बाद के अंदर भी बाद की जो है वो खबरें भी हैं, सिर्फ यही नहीं है बल्कि मैं फी नबाओ मा कबलकुम व खबरों मा बादकुम, तुम्हारे पहले वालों की खबरें भी इसके अंदर मौजूद हैं और तुम्हारे बाद में आने वाले लोगों की खबरें भी मौजूद हैं। तो जाहिर है ये ऐसा नहीं है कोई आज कोई शख्स जाए कि देखिए फलां कौम जो अभी 21वीं सदी में है उसके बारे में कुरान में क्या खबर, आप किरदारों के हवाले से जो है वो देख सकते हैं कि ये किरदार कुरान मजीद में मौजूद है, अल्लाह ताला ने पे बात की है, तो इस तरीके का तदबीक जो है आप वो कर सकते हैं। तो कुरान का ये इससे जो है ये बात साबित होती है कि देखिए कुरान मजीद ने एक उसूल बयान किया है और कुछ जो है किरदार बयान किए हैं और कुछ किरदारों के खवास और क्वालिटीज और उनके जो है करेक्टर बयान किए हैं, उनकी बिना पे आप जो है उनको पहचान लें कि कौन वो क्या है। तौहीद का इस बात जो है वो हर मक्की सूरत के अंदर किया गया है और शिर्क की तरदीद हर मक्की सूरत के अंदर की गई है। यहां भी जो है वही बात बताई गई है, कायनात के मकसद को जो है पैदा करने के मकसद को बताया गया कि अबस नहीं है और जमीन और आसमान भी इसी तरह जो है ये अगर अलग अलग किसी और खुदा ने बनाए होते तो फिर इनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। फिर ये भी बताया कि सब रसूलों की दावत एक ही दावत थी और ये सब सारे के सारे एक खुदा वाहिद की बंदगी की तरफ जो है बुलाते थे। फिर फरमाया कि अल्लाह की औलाद या फरिश्ते या बेटी होने की तरदीद की गई है, जैसे मुशरिकीन दावा करते थे और फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे, तो फरमाया कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से हैं और वो लोगों की जो है वो सिफारिश कर सकेंगे। फिर तौहीद के बारे में, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में आफाकी दलीलें हैं, और देखें कि ये आफाकी दलीलें जा बजा कुरान मजीद में फैली हुई है। और ये वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे मक्की दौर 13 साल के अंदर, और बाद में भी कभी कभार ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इन दलाइल को जो है वो उतारा है, और दलाइल को जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, ताकि मौके की मुनासबत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे वक्तन फवक्तन जो इतराजात होते थे, और आपके कल्बे मुबारक को मजीद जो है मुस्तहकम करने के लिए और मजीद कुव्वत पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ औकात के अंदर इस तवील अरसे में ये सारे जो है दलाइल जो है वो नाजिल फरमाता रहा है। अफाकी दलीलों के अंदर, यानी अफाकी से मुराद पूरे अफाक में, यूनिवर्स के अंदर, जमीन व आसमान और फिर पानी और पहाड़, पहाड़ी दरों से इस्तदलाल, और दिन रात का ये जो बदलना है, चांद सूरज मदारों में चलना, ये सारे के सारे इनसे इस्तदलाल किया गया है कि जरा सा इंसान इन पे गौर करे और इनकी परफेक्शन के ऊपर और इनके निजाम के ऊपर, तो इंसान जो इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि कोई अजीम हस्ती है जो इनको पैदा करने वाली है और फिर इनकी तदबीर कर रही है। और फिर एक बात बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि रसूल जो है वो आए हैं तो हमेशा के लिए आए हैं, बल्कि रसूल भी आए हैं तो वो भी चूंकि इंसान है इसलिए वो भी मौत का मजा चखेंगे। मुशरिकीन जो आपका मजाक उड़ाया करते थे, उन पर जो है वो फर्द जुर्म किस्म की आयत की गई है कि ये जो है अल्लाह ताला इसको देख रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है, और फिर जो है उनपे उनको बताया गया उनके बारे में, मुजरिमीन मुशरिकीन के बारे में, कि इनको अल्लाह ताला जो है इस पे सख्त किस्म की जो है सजा देगा। मुशरिकीन के खुद साख्ता खुदाओं की बेबसी के बारे में एक बहुत अहम जो है वो बात यहाँ पे बताई गई है। मुशरिकीन से सवाल किया गया है कि जो है अगर वो कौन है तुम्हारा मददगार और तुम्हारा जिसको तुम पुकारते हो कि जो तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से तुम्हारी हिफाजत जो है वो करे, या अगर अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो पकड़ ले तो उससे तुम्हें जो है वो तुम्हें उससे छुड़ा सके। फिर सवाल किया गया कि तुम देखते नहीं हो कि इनके ऊपर, ये मुशरिकीन के ऊपर हर आने वाले दिन में इन पे जमीन तंग हो रही है, और इसके बिल मुकाबिल ये जो दावत है, ये दावत जो है वो फैलती जा रही है और जमीन में जड़ें पकड़ती जा रही है, और इस बिना पे ये पेशन गोई की गई है कि बहुत देर, ज्यादा देर नहीं होगी कि ये जमीन में जो है टिक न सकेंगे, बहुत जल्द जो है ये इस जमीन से इनको बाहर निकाल किया जाएगा और ये इकतदार बिल आखिर मुसलमानों को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये फिर इसके बाद मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र है, रसूलों का एक पूरा गिरोह है, और ये भी बात बताई गई है कि ये सारा सिलसिला रिसालत एक ही सिलसिले की जो है वो कड़ियां हैं। बाज़ जो है वो रसूलों के बारे में, अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में जरा बहस तवील है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में और दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में और बाकी रसूलों के बारे में, जिन्हें नूह अलैहिस्सलाम और मूसा और हारून और लूत और इस्माइल और इदरीस और ज़ुलकिफ़ और ज़ुन्नून और ज़करिया और याजा और ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके बारे में निस्तन इख्तिसार से तबसरा हुआ है। इन तमाम कसस में, यानी रसूलों के जो किस्से हैं और उनकी जो दायाना जिंदगी है खास तौर पर, यानी उनकी जो दावत है कौम को, वो उनके वाकयात को जो है वो बयान किया गया है, और वजह यह है कि वही वो चीज थी, वो दावत और उनके दा उनका जिंदगी का मकसद ही वो चीज थी जो सबसे ज्यादा मुतालिक था उस मुआशरे में जो है वो बात बताने के लिए और लोगों को बात समझाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमात का जिक्र किया गया है, और कि उन्होंने किस तरीके से गौर फिक्र से काम लिया, फिर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करके उनकी खिदमात का, उनकी दावत का और उनकी इस्तेकामत का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से लोगों ने उनको ठुकराया, उन्हें झुटलाया, और लेकिन वो इस पे जो है वो डटे रहे। फिर उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और इदरीस ज़ुल्कफ़्र का भी जिक्र है, और उनके बारे में भी सब्र इस्तिकामत के बाद जो है उनके नेक चलनी और उनके किरदार और के अच्छे किरदार के बायस उनको रहमत में दाखिले का जो है वो बताया गया कि अल्लाह ताला की रहमत में सब दाखिल होंगे। ये सब इंसान थे, लफ्जों पे जो है अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे, उसकी तरफ रुजू करते थे, साबिर और शाकिर थे, दावत के देने वाले थे और जुर्रत और अजीमत से काम लेने वाले थे, और ये तमाम के तमाम अंबिया और उनके पैरों एक ही उम्मत थे। फरमाया कि इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये सारी की सारी जो है वो एक ही उम्मत थी। तो ये जो है वो बात बताई गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आपको पूरी जो है कायनात के लिए रहमतुल्लिल तमाम आलमों के लिए रहमत बना के जो है भेजा गया है। बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़े लकब से, अलकाब से और बहुत बड़ी फजीलत से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा। और ये खुशखबरी भी सुनाई कि बहुत जल्द मुसलमानों को इस जमीन के अंदर इख्तदार हासिल होगा। इन अर्द यरसुआ इबादिय सालिहून, ये जो है ये जमीन जो है ये इसके वारिस होंगे अल्लाह ताला की नेक और इबादत बंदे, ये मुसलमानों को दी। और यही बिशारत जो है जबूर के अंदर भी जो है वो दी गई थी। इस सूरत के अंदर कुरैश के मुतजाद एतराजात को और इल्जाम का जिक्र किया गया, उनके जवाब दिया गया, मुतअद्दिद अंबिया अलैहिस्सलाम की सरगुजश्त और उनकी दावत की असलूब और दावत का पूरी जो है वो आप कह रहे हैं दावत की सरगुजश्त है। और कुरैश को मुतनब्बर किया गया है कि अगर तुम यह हकायक और ये दावत तस्लीम नहीं करोगे तो फिर अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंचने के लिए जो है वो तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर सूरह हज है, देखिए सूरत अल हज जो है ये भी मक्की सूरत है, लेकिन इसके बारे में ये जान लेना चाहिए कि ये एक ऐसी सूरत है जिसमें दोनों मक्की और मदनी खसूसियात पाई जाती हैं। इसलिए कि इसकी ज्यादातर आयात तो जो है वो अगरचे कुछ जो है मुफस्सिरीन का ख्याल है कि पहले हिजरत से पहले उतरी, कुछ फिर हिजरत के दौरान उतरी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, और कुछ मदीना के अंदर हुई। तो फिर इस तरीके से ये एक जो है वो बिल्कुल मिक्स जो है वो सूरत है, लेकिन बिलउमूम जो है वो इसको मक्की सूरत कहा जाता है। 24 आयात हिजरत से पहले और 54 आयात जो है वो हिजरत के दौरान या फिर हिजरत के बाद नाजिल हुई। और इसके अंदर भी जो है मुशरिक, और ये जो बात है कि ये वो मक्की सूरत है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मक्की सूरतों से अलग तौर पर इसके उसलूब जो है वो बदल जाता है। और वजह यही है कि जाहिर है अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं तो फिर जो है वो अब हालात और फिर हालात के तकाजे जो है वो बदल रहे हैं, तो वो चीजें अब इस सूरत के अंदर जो है वो हमें मिलेंगी। पहली जो जो बात की गई है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताई, इसकी इस सूरत के चार बड़े मौजूआत हैं। पहला ये मौजू है कि ये जो दावत हक है और कयामत की निशानियों से लोगों को आगाह किया गया कि ये रसूल क्या दावत लेके आए हैं, और देखेंगे फिर इसके बाद आगे क्या है तुम लोगों के लिए। बहुत जल्द जो है वो हिसाब किताब का दिन आने वाला है, तो फिर ताकि लोग जो है वो सीधी राह पे आ जाए। दूसरी जो बात की गई है वो इसमें जंग की इजाजत दी गई है। जैसे मैंने कहा कि उसलूब तब्दील हो जाता है, जाहिर है अब मुसलमान जो है मदीना जा रहे हैं और मदीना बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो जाहिर है अब मुसलमानों को इससे पहले कुफ्फू ऐदियकुम अपने हाथ रोके रखो का हुक्म था। अब मुसलमानों की इजाजत दी जा रही है कि अगर तुम पे हाथ उठाया जाए, अगर तुम पे जुल्म सितम हो, अगर तुम प्रोसिक्यूशन के शिकार हो, तो फिर तुम इजाजत है कि तुम अपना दिफा कर सकते हो, जवाब में तुम हथियार उठा सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। और फिर साथ ये भी बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और ईमान और अल्लाह पे भरोसा मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरी जो बात बताई गई है वो जाहिर है मक्की सूरत भी है, इसमें तौहीद का जो बयान है और फिर शिर्क और खुदाए वाहिद का जो है वो उसकी तरफ शिर्क और तौहीद का बयान है, और अल्लाह ताला की तरफ जो है खुदा वाहिद की दावत उसकी जो है दी गई है, मुशरिकीन के बनाए हुए जो माबूद हैं उनकी हकीकत खोली गई है। चौथी जो बात बताई गई है वो मुसलमानों को खास तौर पर उम्मत मुसलमा को बतौर उम्मत जो है वो बताई है कि तुम बेहतरीन उम्मत होने का एजाज तुम्हें दिया गया है, और ये एजाज हासिल करना आसान है मगर इसको कायम रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, कोशिशें करनी होंगी, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और बेदरेग होकर जो है वो तुम्हें हर मैदान में जो है वो निकलना पड़ेगा इस जो है दीन को सरबुलंद करने के लिए। तो ये जो है वो इसके मेन जो है मौजूआत हैं। अब जो है वो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ जो फर्द जुर्म जो है इसमें पहले आयद है कि उनके खिलाफ जिहादो किताल का जवाज फराहम किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वहां यहां भी चूंकि मुसलमानों को इससे पहले जो है اجازت تھی، لیکن اب مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب جب مسلمان مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کا جو کعبہ و قبلہ و مرکز و محور جو ہے وہ بیت اللہ، وہ اب جو ہے ان کی جو ہے کنٹرول کے اندر ہے، مشرقین کے اندر کنٹرول میں، لہٰذا ان کو جو ہے ان کے لیے زیر بنایا جا رہا ہے. پہلے تو ظاہر ہے یہاں پہ اجازت دی گئی اور بعد میں پھر یہ اذن قتال ہے، یاد رکھنا چاہیے، اور بعد میں پھر حکم قتال بھی آ گیا جب مسلمان مدینہ کے اندر جو ہے وہ پہنچے، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ادھر اس طرف جو ہے سلولی گریجولی جو ہے تدریج کے ساتھ لایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنا یہ مرکز اور محور تمہیں ان سے جو ہے وہ لینا ہے. تو پھر جو ہے مسلمانوں کو اطاعت اور عبادت اور دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال اور اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے یہاں پہ، اور مسلمانوں کو دفاعی جہاد کی اجازت مل رہی ہے. اور پھر جو ہے یہ جو مکہ کی لیڈرشپ تھی اس کا تقابل کیا گیا ہے اور ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور لیجیٹیمیسی آف وار جو ان کے اگینسٹ جو مسلمانوں کو تیار کی، دیکھو ان کے خلاف اگر تم لڑو گے تو یہ بالکل ایک لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ وار بیٹل ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جو ہے یہ نجس ہیں اور یہ قابض ہیں، اور یہ ان کے اس سے نکال لینا چاہیے. تو یہ ذہن سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو بتایا کہ یہ اللہ کے گھر کے بالکل ہی جائز متولی جو ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے جائز متولی اور لیجیٹیمیٹ کسٹوڈین جو ہیں اس کے وہ مسلمان ہیں. مسجد حرام کے حقوق اور احکام حج کی تفصیلات جو ہے بتائی جا رہی ہیں پھر. اور پھر قریش کی جب جو قیادت ہے اس کو انتہائی اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے کہ یہ ایک بد عہد اور خائن قیادت ہے، اور جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اسلامی قیادت ہے اس کا جو تذکرہ ہے. اسلامی ریاست کی چار ذمہ داریاں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. یہ بہت معروف 41 نمبر جو ان مکان ناہم فی الارض اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ والی جو آیت ہے یہ بہت، اس میں اسلامی ریاست کی چار ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اور یہ بہت اہم ہے، اور ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور اسلامی ریاست کن اصولوں کی بنیاد پہ قائم ہوگی. اگر کوئی ریاست یہ چار کام نہ کرے تو پھر وہ اسلامی ریاست کی تعریف کے اندر نہیں آئے گی، اور جتنی لحاظ سے جو چیزیں اس میں کمی ہوگی اس لحاظ سے اس کی اس تعریف کے اندر بھی جو ہے کمی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ وہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں اقتدار دیتا ہے وہ حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، تو پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نماز کا قیام، نماز کا پورا اقام الصلاۃ، اس نماز کا جو ہے وہ سسٹم قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہے مساجد اور مساجد کا اہتمام اور مساجد کی جو ہے وہ کسٹوڈینشپ اور جو ہے مساجد کی جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں، امام مؤذن اور اس کی جو ہے وہ مینٹیننس، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. پھر اہتمام زکوٰۃ ہے، ظاہر زکوٰۃ کلیکٹ کرنا، اور پھر جو ہے لوگوں سے، اور پھر جو ہے جو لوگ وہ ہیں جن لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، وہ لوگ جو مستحقین ہیں، مستحقین تک جو ہے زکوٰۃ کو پہنچانا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اسلامی ریاست کے نظم کے ہوتے ہوئے کوئی زکوٰۃ الگ طور پہ اگر جو ہے زبردستی دینا چاہے کہ میں ریاست کو نہیں دوں گا، تو یہی وہ نقطہ تھا جہاں یہ عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی، یہی وہ نقطہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے جہاد منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے اس کی وجہ بنی. منکرین زکوٰۃ کا یہ جو اسٹانس نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ظاہر ہے کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ نظم اجتماعی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم خلافت کو نہیں دیں گے، اور بیت المال کو نہیں دیں گے، اور جو حکومت ہے اس کو نہیں دیں گے، یہ جو ہے وہ تھا. لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسٹانس لیا وہ پوری امت کے لیے تا قیامت جو ہے اس پہ امت کا، چونکہ بعد میں اور تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، لہٰذا یہ جو بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. پھر تیسری بات، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا معاشرے کے اندر، اور پھر نہی عن المنکر برائی سے روکنا. برائی کے جتنے منبع ہیں ان سب منبعوں کو جو ہے پلاگ کرنا، ختم کرنا، उनकी जो है बेखूनी करना कि जहां से बुराई फैलती है, ये भी इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियों में से, ये बहुत अहम, मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक को ये जो है कोई तफसील का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं इशारा करता चलूँ इसकी अहमियत के हवाले से कि ये वो जो है आयत है जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तफसील के साथ, बहुत तफासिर की रोशनी के अंदर जो है इसको जो है जानना चाहिए। इस्लामी रियासत की जिम्मेदारियां क्या है, ये चार जिम्मेदारियां जो बताई गई। अल्लाह की दीन की नुसरत करने वालों को अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत का जो है वो वादा फरमाया, जहां पे फिर दिफाई जिहाद की इजाजत दी है। तकजीब करने वाले, जो झुठलाने वाले हैं, उनको जो है वो पिछली तारीख बताई गई है, और फिर बराह रास्त उनको हलाकत की धमकी दी गई है, और मोहलत के जो जो दो कवानीन हैं उनको बता दी कि किस तरीके से अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत जो है वो अता करेगा, मोहलत के बाद जो है फिर तुम्हारी ये जो है ये जब खत्म होगी तो तुम फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओगे। फरमाया कि खालिक जो है, ये तौहीद का खालिस बयान है कि खालिक और फिर उसने जो मखलूक पैदा की है वो कभी बराबर नहीं हो सकते, और ये जितने लोग पे दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजों में से उन लोगों को अल्लाह ताला के बराबर ठहरा लेते हैं। अल्लाह ताला के बराबर जैसे अल्लाह ताला से मांगना चाहिए वैसे लोगों से मांगते हैं, उन चीजों से मांगते हैं, उन अशिया से मांगते हैं, और जो है वो जो जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जबरदस्त अंदाज में इस सूरत के अंदर जो है वो बयान किया गया है, और एक बड़ी जबरदस्त तमसील बताई गई है। फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को अपनी उसकी अल्लाह ताला की मखलूक को जो है वो आवाज देते हैं, पुकारते हैं अल्लाह के मुकाबले में, यानी अल्लाह ताला को छोड़ देते हैं और दूसरों को जो है पुकारते हैं, तो फिर फरमाया कि उनकी मिसाल तो जो है वो बड़ी कमजोर, उनकी जो है वो एक उन वो तो जैसे एक मक्खी होती है, और मक्खी जो है उनसे वो इतने कमजोर उन्होंने वसीले पकड़ रखे हैं कि मक्खी अगर देखें कि एक जो है उनसे अगर जरा भी जो है कोई चीज छीन के ले जाए तो फिर जो है वो जो है उससे वो भी नहीं छुड़ा सकते। ये तस्वीर वही युस लुम हम लुब हम जुबाब शयम ला यस्तन के जू न हो जो तालिब व मतलूब। फरमाया कि अगर कोई मक्खी जो है इनसे छीन ले कोई चीज तो ये उसको छुड़ा भी नहीं सकते। कितने जो है कितने जयीफ हैं जो है मांगने वाले भी और वो भी जिनसे मांगी जा रही है। ये देखेंगे ये जो बात है जो यहाँ पे जो है बताई गई है, तो ये इस जबरदस्त तमसील के जरिए से जो है वो बात उसकी बताई गई है, तौहीद को बताया गया, मुसलमानों को आखिर में सूरत के आखिर में बताया गया कि मुसलमानों की हैसियत जो है उनको बता दी गई, वाजे कर दी गई कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है और तुम्हारा असल काम यह है कि दुनिया में तुम शहादत अल्लाह नास के मकाम पर खड़े किए हुए। बहुत अहम रुकू है, आखिरी रुकू इसका इस हवाले से। और मैं आप तुम्हारा तर्ज अमल यह होना चाहिए कि तुम्हारे अकवाल और तुम्हारे अमाल और तुम्हारे अतवार जो है उससे इस्लाम और इस्लाम की किरणें जो है उसे फूटनी चाहिए, और फिर लोग देख सकें तुम्हारे किरदार से और तुम्हारी किरदार से और तुम्हारी गुफ्तार से कि अल्लाह ताला के मुस्लिम कहलाने वाले लोग किस तरह और किस सीरत और किस किरदार के हामिल होते हैं। और तुम्हें रही ये दुश्मनों की बात तो तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है, और जिसके अल्लाह ताला मौला हो उसको किसी कुव्वत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के लिए एक जो है 10 नुकाती हिदायतनामा यहाँ पे जो है जारी किया गया है, और इसमें जो इबादात रुकू सुजूद अफाल खैर जिहादो किताल इब्राहिमी दीन इब्राहिमी की पैरवी शहादत दीन की अंजाम की जो अंजामदही ये जो है इतमाम नमाज जक़ात अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक इज्तमाईयत की तश्कील ये सारे की सारे बातें बताई गई हैं। फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा का जो है कुल्ली फलाह का दारो मदार सही अकीदे के ऊपर है, और इबादात अल्लाह ताला की उसकी इताअत के अंदर और सही इज्तिमाई रवैयों में है। मुसलमान जो है वो जिस्मानी और जहनी और फिक्री और माली और मादी और रूहानी सलाहियतों से जो है तमाम सलाहियतें जितनी भी हैं हर किस्म की सलाहियतें जो है वो शहादत दीन के लिए वो वक्फ करें, और फिर मुसलमानों को सही अकीदे तौहीद जो है वो अपनाना की अहमियत बताई गई है कि शहादत दीन जो है अकामत दीन इमामत व क़यादत जिहाद और अजर इज्तमाई के लिए मुसलमानों को मुंतखब कर लिया गया है, तो ये काम करने के लिए उनको जो है तैयार रहना चाहिए। दीन इस्लाम में रहबानियत की नफी कर दी गई है और इसमें कोई सख्तियां नहीं रखी गई हैं और इसमें कोई जबर भी नहीं है। इसका इनके नाम यहाँ भी मुसलमान था और पहले ही उम्मतों के अंदर भी अल्लाह ताला ने इनका नाम मुसलमान रखा है, और ये जो है फिरके परस्ती से बचे, शहादत दीन के जो है बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और आप फिर उम्मत से भी अलग अलग जो है बाजपुर से होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा जाएगा कि क्या आपने अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला वो शहादत गवाही दे दी है इस दीन की इनके ऊपर, उम्मत के ऊपर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये गवाही जो है आप इससे शहादत ले गए हैं इस उम्मत से जो है हज्जतुल वदा के मौके पर, कि अला हल बल्लग तो, क्या मैंने ये बात पहुंचा दी है तुमने, तो जो है 1.25 लाख के मजमे ने जो कहा कि बिल्कुल अल्लाह के रसूल आपने तो ये बात पहुंचा दी है और बात पहुंचाने का हक जो है आपने अदा कर दिया है। फिर उम्मत से ये पूछा जाएगा कि जब अल्लाह के रसूल ने तुम तक पहुंचा दी बात, तो फिर तुमने इसके साथ क्या किया, तुमने क्या ये आगे पहुंचाई बात, और तुमने ये उम्र ये जो शहादत थी दीन की, शहादत दीन की गवाही, और ये क्या दूसरों तक लोगों तक आगे पहुंचाई, ये फिर उम्मत से जो भी सवाल किया जाएगा, ये इस सूरत के आखिर में ये बात बताई गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये शहादत अलन्नास और ये जो है अलाह कलमतुल्ला के लिए इसको आगे पहुंचाने की जो है तौफीक अता फरमाए, और इस पे इसको पूरा पूरा जिस तरीके से करने की जरूरत है, पहुंचाने की जरूरत है, अल्लाह ताला उन्हें तमाम तकाजों के साथ पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह।